नहीं इम्पोर्टेंट आपके सेशन, तो आज ही आपका पहला सेशन है, तो नेक्स्ट सेशन से आप चाहें तो नोटबुक भी ला सकते हैं और एक और पॉइंट भी बताएंगे, और चाहे तो आज भी बैठे बुलाएं थोड़ी सी कुछ वीडियोज या फिर जिसके भी आप फायदे ले सकते हैं, और नेक्स्ट सेशन से अपने क्लास भी नोटबुक लाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे पहली बार है तो बताना चाहूँगा शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस ग्रेट सुंदर गोपाल दास। प्रभुजी हैज डन हिज बीटेक फ्रॉम बिट्स पिलानी एंड हिज एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड देन ही वर्क्ड एज अ मैनेजर इन फॉर 3 years इन एलएनटी बैंगलोर में एज अ मैनेजर 3 years ही वर्क देन ही डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर प्रीचिंग एंड टीचिंग हिज प्रिंसिपल्स है ना, इस आध्यात्मिकता को कृष्ण भावना व्यक्ति प्रचार के लिए अपना जीवन उसमें लगा रहे हैं और बहुत सारे कॉलेज में जाकर टीचिंग करते हैं, आईआईटी दिल्ली, डीसी, जेएनयू, एमिटी, आईडीएम और गुड़गांव कॉलेजेस, गाजियाबाद कॉलेजेस, फुल लिस्ट इज देयर एंड ही इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स आल्सो पर्सनली गाइड कर रहे स्टूडेंट्स। पिछली बार हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, थैंक यू पूरा 11:30 तक है फोन दे रहा है कि वेरी क्वेश्चन, तो लाइव भी जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके बिल्कुल सॉल्व होंगे, सकते हैं बट प्लीज रेगुलरली सेशन में आइए। हरे कृष्ण।
Discover the sublime secret that underlies and unifies all of the great religions of the world. Go beyond externals to the heart of spirituality. Love. Love for God and love for all His children. Discover practical and powerful techniques to awaken that lost love in your own heart and to share that treasure of divine love with the whole world. Don't miss this intellectual and spiritual adventure, lest you miss yourself.
तो ये जो स्लाइड हमने दिखाया ये इसमें आपने देखा होगा छह सेशंस के बारे में बताया जा रहा है सेशन वन सेशन टू सेशन थ्री सेशन फोर सेशन फाइव एंड सेशन सिक्स तो ये जो छह सेशन का कोर्स है हमारा इसका नाम है डिस्कवर योर सेल्फ और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम ये कोर्स करेंगे यहाँ पे हर शनिवार को 7:30 to 9:30 लास्ट टाइम हमने कवर किया था कि आध्यात्मिक जीवन का क्या महत्व है हमें आध्यात्मिक जीवन को क्यों अपनाना चाहिए तो मैं प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से कि लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे वो बताएंगे क्या आपने जब भी समझा हमें आध्यात्मिक जीवन को अपनाने से क्या क्यों अपनाना चाहिए आध्यात्मिक जीवन कौन बताएंगे लास्ट टाइम जो आए थे लास्ट टाइम कौन आए थे हाँ तो आप लोगों का परीक्षा है टेस्ट मेंटल पीस हमने जो डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था उससे बताइए शांति के लिए लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया क्लास में शांति तो एक चीज़ और बताइए
मुझे आज के समय में जो हम देखते हैं कि साइंस में बहुत ज़्यादा आविष्कार हो साइंस में बहुत प्रगति करी है मगर उस प्रगति के बावजूद अगर हम देखें कि इंसान की जो जो परेशानियाँ है वो बढ़ी है हमारे घर बड़े हुए हैं मगर हमारे जो दिल हैं वो छोटे हुए इस प्रकार के छोटे छोटे उदाहरण बताए गए थे तो जो साइंस है वो जो इंसान है उसकी परेशानियों को साइंस ने बढ़ाई है तो इसलिए हमें लगता है कि कोई एक ऐसी चीज़ की हमें ज़रूरत है जो हमारे जो परेशानियाँ हैं उनको दूर कर सकते तो आध्यात्म हमें लगता है कि जो हमें इसमें सहयोग कर सकते
और बताएंगे लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था आध्यात्मिक जीवन क्यों आवश्यक है
जो आध्यात्मिक जीवन की जो आवश्यकता है क्योंकि ये भौतिक जगत में हमें समझ नहीं आता कि हम करेंगे सब कुछ सही लगता कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ है नहीं तो जब हम आध्यात्मिक जीवन में अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो है और हम उस किस तरीके से उसे पा सकते हैं ये सिर्फ हमें आध्यात्मिक में ही आध्यात्मिक में ही हम जान सकते हैं
और बताइए आपको बताएंगे आपको पॉइंट सही है बहुत अच्छा बताया आपने जीवन का उद्देश्य क्या है
आत्मा का
विज्ञान के पास इसका क्या उत्तर है आधुनिक विज्ञान के पास इसका क्या उत्तर है हम इस संसार में क्यों हैं हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है क्या प्राप्त करना चाहते हो इस जीवन से
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ जो है सही मतलब स्वयं के तरीके आते हैं और आप इसे चार्ज प्लान की
विज्ञान की तरफ से
विज्ञान की तरफ से
विज्ञान विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड का क्या उद्देश्य है क्यों बनाया इतना सुंदर ब्रह्मांड क्यों है तो क्यों है मतलब मैं पूछ रहा हूँ कैसे है वो तो बाई चांस बता सकते हैं क्यों बाई चांस का है या बाई बिग बैंग जो भी कह सकते लेकिन क्यों इतना सुंदर सब कुछ इतना अच्छा है इतने व्यवस्थित रूप से क्यों क्या उद्देश्य है तो बहुत अच्छा बताया उसका उत्तर। और बताइए, जब मैं चाहता हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था उस पर से कुछ बताएं आपको, इसलिए नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग का मतलब इसमें मेमोरी शॉर्ट होती है ना। प्राण अल्पायुष कलावस्मिन युगे जना मंदासमंद मतयो मंद भाग्य उपलब्धता। ये डेफिनेशन है कलयुग के लोगों का शास्त्रों में। शास्त्रों में बताया गया कि कलयुग में कैसे लोग होंगे, बताया जा चुका है पहले से भविष्यवाणी के लिए, इस प्रकार के लोग कलयुग में होंगे। इसमें बताया गया कि मंद सुमंद बुद्धि, सुमंद मतलब मंद भाग्य है, उपद्रवता ऑलवेज डिस्टर्ब है, लेजी स्पिरिचुअली लेजी है, और बहुत बुद्धि जो होगी बहुत मेमोरी बहुत शॉर्ट हो जाएगी, कभी मेमोरी याददाश्त बहुत कमजोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑलवेज डिस्टर्ब, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं हम अंदर से। लेकिन वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं है, प्राचीन वैदिक कल्चर में शास्त्र में बताया वो लोग श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर में एक बार जो सुन लिया वो पूरा याद हो जाता है, इतनी शार्प मेमोरी थी। तो हम चूँकि हम हमारी समस्या है कि हम याद नहीं रख सकते, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नोट करना चाहिए। इसीलिए नोट पहले वेद जो है लिखित रूप में नहीं होते थे। प्राचीन समय वेद जो है केवल गुरु बोलता था और उसी से याद कर लेते थे। लेकिन जब कलयुग आया तो भगवान ने सोचा कि मेमोरी कमजोर हो जाएगी लोगों की, तो फिर याद तो करेगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, भगवान ने स्वयं वेद व्यास के रूप में अवतार लिया और सारे वेदों को लिखित रूप में दिया, बुक फॉर्म, जो कि आज अवेलेबल है हमारे पास, बुक फॉर्म। हर चीज़ को हमें बुक फॉर्म में रखने की जरूरत है, इसलिए नोट्स बनाने। नहीं तो आप आए यहाँ पे आ रहे हैं आप लोग तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि कुछ हमें मिला, इंफॉर्मेशन मिला या नॉलेज मिला कुछ। जब मान लीजिए आप जाएंगे वापस तो आपके दोस्त पूछेंगे आपसे क्या हुआ, क्या सीखा, तो आप ब्लैंक हो जाएंगे, फिर क्या बोलेंगे, अरे तुमने टाइम वेस्ट किया। लास्ट में हमने एक वीडियो दिखाया था, आपको याद है किसी को, क्या किसके ऊपर वीडियो दिखाया था, उससे क्यों दिखाया था मैंने, उससे क्या आपने सर्च निकालते इस वीडियो से। नो फूड क्राइसिस इन द वर्ल्ड, फूड क्राइसिस तो है लेकिन आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, कोऑपरेशन नहीं है, कोऑपरेशन कैसे आएगा,
विल
विलिंगनेस कैसे आएगा। हाँ, मैंने डिस्कस किया था कि जब तक लोगों का हृदय नहीं बदलेगा, कॉन्शियसनेस जब तक नहीं बदलेगा लोगों का, तब तक आप कितना भी आप उनको फैसिलिटी दे दो, साइंटिफिक फैसिलिटी, उनका जीवन नहीं बदलने वाला है, समस्या दूर नहीं है ना। एक जो वीडियो दिखाया था कि आजकल के युवा वर्ग में कितनी सारी समस्याएं हैं, है ना, सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेस हैं, एंग्जाइटी, तो ये सब समस्याएं क्यों हैं, इसका कारण ये है आध्यात्मिक जीवन का अभाव, आत्मज्ञान का अभाव। आत्मज्ञान नहीं है, अपने बारे में ज्ञान है, मैं कौन हूँ पता ही नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, कोई ज्ञान नहीं है। और इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिलता नहीं, क्योंकि विज्ञान इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाता, विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है। उन्हें वैदिक शास्त्र जिन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, विज्ञान के पास कोई उत्तर है ही नहीं। आज तक कितने साल रिसर्च होने के बावजूद विज्ञान आज भी जो है इस पर मूक है। तो ये समस्या है जो हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में आ रही है, युवा वर्ग के जीवन में आ रही है आज, वो उसका उपाय नहीं है किसी के पास। और भी डिस्कस किया था कुछ, जो एक और वीडियो दिखाया था
ग्लोबल वार्मिंग
को, वो क्यों दिखाया था, ग्लोबल वार्मिंग के वीडियो दिखाने से क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? हमने इसके दिखाया था वीडियो, फिर उसके बाद इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है संसार को खत्म करने के खिलाफ ले जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं? ग्लोबल वार्मिंग का रूट काउज क्या है, मूल कारण?
इंडस्ट्रियलाइजेशन।
और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मूल कारण क्या है? लालच, ग्रीड। तो ग्रीड को कैसे दूर किया जाएगा? कोई दवाई है? कोई दवाई नहीं है। एक ही तरीका है, चेंज ऑफ हार्ट। कॉन्शसनेस को बदलना पड़ेगा, लोगों को चेतना को बदलना पड़ेगा। और चेतना को विज्ञान नहीं बदल सकता। चेतना को आप दवाई नहीं बना सकते। आप दवाई खा लीजिए, आपका सारा ग्रीड खत्म हो जाएगा। कोई है ऐसी दवाई ग्रीड सी? कोई है ऐसी दवाई? नहीं है। या आपको कोई अभी इंजीनियर्स ने एक ऐसा मशीन बनाया, आपके हार्ट में फिट कर दिया जाएगा, आपका सारा ग्रीड खत्म हो जाएगा। नहीं सर, कोई मशीन नहीं है ना। तो क्या उपाय है आपके पास, कैसे आप इन समस्याओं को हटाएंगे? अगर ये तो मूल कारण है, समस्या तो यहाँ से शुरू हो रही है। कोई भी पॉल्यूशन जो है वो हार्ट पॉल्यूशन से शुरू होता है। फर्स्ट हार्ट गेट्स पॉल्यूटेड, तब वो बाहर फैलता है, कई रूपों में पॉल्यूट करता है। तो हृदय को शुद्ध करने का क्या उपाय है बताइए आप? आज के विज्ञान के पास क्या उपाय है? चैलेंज है, चैलेंज टू द मॉडर्न साइंस और वेरी गुड लिटरेचर। आवर सेजेज आर चैलेंजिंग मॉडर्न साइंस। व्हाट प्लान यू हैव गॉट टू ट्रांसफॉर्म द हार्ट ऑफ द यंग जनरेशन? सो मच इंफॉर्मेशन बट नो ट्रांसफॉर्मेशन इन द हार्ट। इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाई जा रही है, लेकिन हार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो इन सब समस्याओं का मूल कारण है हृदय की कमजोरी, हृदय की गंदगी। और हृदय की गंदगी जब तक हम दूर नहीं करेंगे, तब तक कोई चांस नहीं है कि इस संसार में शांति और सुख और सौहार्द का वातावरण आएगा। कोई चांस है ही नहीं है? हर 5 साल में 5 वर्षीय योजना बनती है, लेकिन 5 साल के बाद पता चलता है समस्या और बढ़ी गई है कि नहीं? दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ना समस्या। क्यों? क्योंकि उन 5 वर्षीय योजनाओं में हृदय को परिवर्तित करने के लिए कोई योजना नहीं है। इतने बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेज हैं, लेकिन उनमें हृदय को परिवर्तित करने के लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये अपने हृदय को कैसे बदला जाए, अपने कैरेक्टर को कैसे बदला जाए? तो इसके कारण क्या हो रहा है, सारी विज्ञान जितने आविष्कार कर रहा है, वो तो सारे आविष्कार जो है वो मिसयूज किए जा रहे हैं, क्योंकि हृदय गंदा है। तो बंदर के हाथ में अगर आप AK-47 राइफल देंगे तो क्या करेगा? उत्पाद करेगा कि नहीं? उसी तरह से आजकल का युवा वर्ग एक बंदर के समान है। अंतर बस इतना ही है, चेहरा वैसा नहीं है। पैंट आजकल के जो युवा वर्ग है बंदर के समान है, लेकिन ड्रेस और एकदम चेहरा सब मनुष्य का है, लेकिन हृदय जो है बंदर का है। कैरेक्टर जो है वो बंदर का है। बंदर कैरेक्टर पता है? बंदर जो है वो बहुत विरक्त है, वैरागी है, सन्यासी है, कपड़ा नहीं पहनता और कंदमूल फल खाता है, जर्मन बनाता है। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जब भी कोई बंदरी को देखेगा सेक्स को नहीं तैयार हो जाएगा। वैदिक संस्कृति बताता है कि परद्रव्य से लोष्टवत परदारे से मातृ दूसरे की स्त्री को माता के समान रखना, दूसरे के बहन को पत्थर के समान। लेकिन आजकल का जो वर्ग ऐसा देखता है नहीं देखता है, कहाँ माता के समान हम देखते हैं किसी को स्त्री को। ये बंदर का काम है ना, ये कोई स्त्री देखी दिखे तो कैसे सेक्स किया गया, ये कॉन्शियसनेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये बंदर ही है कॉन्शियसनेस। पोस्ट पोजिशन मिलते ही उसका मिसयूज शुरू हो जाता है। IAS ऑफिसर इतने बन गए हैं, बनने से पहले सारे देश की सेवा का प्रतिज्ञा करते हैं, देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दूंगा, लेकिन बनने के बाद फिर देश का गला काटते हैं, ये बंदर का ही काम है। तो ऐसे नेताओं नेतृत्व से क्या हम उम्मीद करते हैं, इसका हृदय शुद्ध नहीं है, उसका अगर बड़ा पोस्ट दे दे तो क्या करेगा, उस पोस्ट का मिसयूज करेगा, करेगा कि नहीं। खास करके नेता लोग क्या है, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए लेकिन हृदय जो है वो बंदर का। इसलिए आप देखो, और ऐसे ऐसे नेताओं नेतृत्व से आप कैसे आशा कर सकते हो कि देश में समाज में सुख और शांति आएगी, असंभव। और चैलेंज है, आप प्रयास करते रहो, पिछले कई वर्षों से प्रयास चलता रहा है और चलता रहेगा, जब तक हम इस ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान को लोगों के हृदय में डालेंगे नहीं, तब तक चाहे कितना भी प्रयास कर ले व्यक्ति या सरकार गवर्नमेंट, जितना भी प्रयास कर ले कोई चांस नहीं है, कोई आशा नहीं है शांति और सुख। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन अपनाने की बहुत आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन योग मेडिटेशन इन सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम हृदय को शुद्ध करते हैं। मेडिटेशन और प्राणायाम और योगा जो पेट ठीक करने के लिए नहीं बनाए हैं, थोड़ा पेट ठीक कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं एक्सरसाइज, पेट ठीक करने के लिए नहीं। भगवत में कहाँ लिखा है ऐसा, लिखा है भगवान ने कि पेट ठीक करना है तो योगा करो, लिखा है ऐसा? ये सब जो है वो मनगढ़ंत बात है। वास्तव में योगा और मेडिटेशन इन सारी चीज़ों का उद्देश्य है हृदय को शुद्ध करना। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य खराब इसलिए है क्योंकि हृदय खराब है, मन खराब है। मानसिक बीमारी से शारीरिक बीमारी उत्पन्न होती है। मन अगर खराब है, मन डिस्टर्ब है, आपका डाइजेशन नहीं होगा, और जब डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, और पेट से आपकी ज़्यादातर 70-80% डिजीज जो है स्टमक प्रॉब्लम के कारण होती है, और स्टमक प्रॉब्लम होता है मेंटल प्रॉब्लम के कारण। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ बात के लिए अगर आप डिस्टर्ब हैं तो क्या होता है पता है आपको, हमारा सारा ब्लड जो है ना, सारा ब्लड जो है वो ब्रेन के एरिया में फोकस हो जाता है, यहाँ से लेकर होता है। और जो ब्लड जो जरूरी होता है स्टोमक में डाइजेशन के लिए, वो सफिशियंट ब्लड यहाँ नहीं रह पाता है, जबकि सबसे ज़्यादा ब्लड की जरूरत डाइजेशन में पड़ती है, सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट करने में पड़ता है। अगर यहाँ पे ब्लड नहीं आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो पॉइजन क्रिएट हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग जिसकी होती है, और फिर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, सारी शरीर की बीमारियाँ। इस तरह से कई चीज़ें लिंक हैं हृदय की बीमारी से। तो हृदय को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है आपको यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान दोनों बताने के लिए। तो आज का जो सेशन है उसमें हम इसलिए बता रहा हूँ, याद रखिए अगली बार मैं फिर पूछूँगा आप लोगों से, ठीक है? तो ये नहीं कीजिएगा ब्लैंक, इससे क्या होगा कि हम इतना सारा चीज़ बता रहे हैं उससे क्या होगा, आपको हमें डिस्करेजमेंट नहीं होगा कि आप ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे, ध्यान से सुन रहे। तो आज का जो टॉपिक है द साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड। मुझे लगा कि आप इसमें कम्प्लीट नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप ध्यान से नोट करेंगे तो अगली बार मुझे रिवाइज करने में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं रिवाइज करने में चला गया तो बहुत लोग नए भी आए हैं इसकी पता नहीं पड़ा हो। तो प्रश्न ये उठता है, लोग बोलते हैं कि विज्ञान जो है भगवान को नहीं मानता, और वैज्ञानिक विज्ञान भगवान विश्वास नहीं करते, ये तो पुराने बीच ख्यालों वाले जो लोग कुछ बचे हैं अभी संसार में वही भगवान में विश्वास करते हैं। तो हमने ये टॉपिक लिया कि क्या इस वैज्ञानिक भी भगवान में विश्वास कर सकता है, तो इस पर हम आप चर्चा करेंगे कि कैसे। तो वैज्ञानिक भगवान में विश्वास कर सकता है, और कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भी भगवान में विश्वास किया है, बहुत नामी नामी बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक। तो और आज भी ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कई किताबें लिख रखी हैं, और विज्ञान के द्वारा उन्होंने प्रूफ किया है, साबित किया है कि भगवान है। भगवान जो है इस संसार के पीछे एक बुद्धिमान व्यक्ति कार्य कर रहा है, इस बात को प्रमाणित किया जा चुका है। आज के समय में हम यही चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इतिहास बताना चाहता हूँ थोड़ा इसका, कि आज से 200-300 साल पहले पूरे विश्व में लोग भगवान में विश्वास करते थे, कोई संशय नहीं था, संदेह नहीं था लोगों को। भारत में तो कहना ही क्या है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं पूजा करने जाता तो लोग बोलते हैं क्या है? तुम जो है वो बिल्कुल ये सब अंधविश्वास है, भगवान नाम की कोई चीज़ है नहीं, ये सब अंधविश्वास है। तो ऐसा परिवर्तन आया कैसे? एक समय ऐसा था कि सब लोग भगवान में विश्वास करते थे, और आज एक ऐसा समय कि लगभग सब लोग भगवान में विश्वास नहीं करते। तो ये परिवर्तन आया कैसे? वही बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों, कैसे हुआ ये? अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छी चीज, अच्छी बात है, इसको अपनाने से जीवन में अच्छाई आएगी, फायदा आएगा, फिर वो क्यों नहीं स्वीकार करना चाहता? कैसे? क्योंकि भगवान को अपने जीवन में स्वीकार करने से कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान आएंगे और आपका सारा पैसा लेके चले जाएंगे। तो फिर क्यों, ऐसा क्यों है कि भगवान व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है? इसके पीछे कारण है, इतिहास है जो आज से लगभग 150 वर्ष पहले शुरू हुआ था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन, आपने नाम सुना होगा। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में थ्योरी निकाली थी जिसको नाम दिया गया था थ्योरी ऑफ केमिकल रिवोल्यूशन, है ना, थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन आप बोल सकते हैं। तो उसमें उसने क्या बताया था कि जो मनुष्य है वो बंदर से आया है। आज से 10,000 वर्ष पहले मनुष्य जो था बंदर था, और बंदर मनुष्य में बदला 10,000 वर्ष पहले, और उससे पहले क्या था? बंदर से पहले पक्षी थे, पक्षी से पहले पेड़ थे, पेड़ से पहले जो समुद्र के अंदर जो जानवर थे उससे पहले क्या था, तो फिर बैक्टीरिया ये सब, तो अंत में जाके उसने बताया कि एक सिंगल सेल इस तरह से इवोल्यूशन हुआ। और शुरू शुरू में पहला सेल कोशिका कैसे बना, जीव पहला जीव जो था जो सेल होता है उसका निर्माण कैसे हुआ, तो बोलता है हो गया ऐसे ही हो गया होगा बाई चांस, एमिनो एसिड से जो है वो हो गया होगा, एमिनो एसिड से बोला कि प्रोटीन बना और प्रोटीन से जो है सेल बना। एमिनो एसिड में क्या है, एमिनो एसिड कैसे बना, तो बहुत सारा अमोनिया था और बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड सब गैसेज थी आपस में मिला और बन गया होगा। लेकिन तो उसके बाद उसने क्या किया, इस थ्योरी के द्वारा एक किताब निकाली और उसे बड़ा बल मिला उस थ्योरी से, किसको, जो लोग भगवान को हटा के पाप करना चाहते थे उनको बड़ा बल मिला है, बहुत अच्छा टूल मिल गया अभी इसके द्वारा भगवान को, ये भगवान के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हम कोई पाप नहीं कर पा रहे और कोई कारण नहीं भगवान को हटा दिया। जैसे ही कोई व्यक्ति थ्योरी देता है कि भगवान नहीं है, बड़े खुश हो जाते हैं लोग, अरे बाप रे बच गए, नहीं तो अभी दंड मिलेगा हमें, बहुत पाप कर रहे हैं बच गए। इसलिए प्रूफ किया जा रहा है कि भगवान नहीं है, किसी तरह से प्रूफ कर दो भगवान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान विकास कर रहा है दिन पर दिन खुलता जा रहा है ज्ञान कि भगवान तो है। 1869 में जो ये थ्योरी आई थी इसने बहुत लोगों के हृदय को बदल दिया, लोग जो बिल्कुल नास्तिक हो गए, कई सारे चर्च बंद हो गए अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री में, कई सारे चर्च क्लोज हो गए और बाइबल इसका कोई उत्तर नहीं दे पाया। क्यों, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है 4000 वर्ष पहले प्रकट हुई, पृथ्वी का निर्माण हुआ आज से 4000 वर्ष पहले, सॉरी 4000 BC में हुआ था, और डार्विन बता रहा है कि 10000 साल पहले जो है बंदर से मनुष्य बना, तो क्या बंदर जो है पृथ्वी से पहले बना था, तो इस बात पे डाउट हो गया, बाइबल को रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। तो इस तरह से ये परिवर्तन आया, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र इसको नहीं मानते। ये जो थ्योरी कि मनुष्य, श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, तो किस एक वैज्ञानिक ने उनसे प्रश्न पूछा, उसने पूछा कि हम सब आज से 10000 साल पहले जो है बंदर थे और बंदर से हम मनुष्य बन गए। डार्विन के अनुसार आज से 10000 वर्ष पहले मनुष्य जो है वो बना बंदर से। प्रभुपाद ने बोला कि दिस इज रैस्कल्डम, स्टूपिड आइडिया। प्रभुपाद ने बोला कि डार्विन के एंसेस्टर्स में भी मंकी, बट आवर एंसेस्टर्स आर नॉट मंकी, आवर एंसेस्टर्स आर ग्रेट सेजेस, दे हैव गिवन सो मच नॉलेज, वी डोंट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस आइडिया, मनुष्य जो बंदर से आया, अगर मनुष्य बंदर से आया तो आज का बंदर मनुष्य क्यों नहीं बन रहा। हम देखते हैं कि बंदर बंदर ही है और मनुष्य मनुष्य ही है कि नहीं, आज का बंदर मनुष्य क्यों नहीं बन रहा है, या आज का मेढक जो है वो कुछ और क्यों नहीं बन रहा है, आज ये इवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। और इस पर कई प्रश्न चिन्ह, कोई आज तक सबूत नहीं मिला कि मनुष्य बंदर से मनुष्य बना, इसे आज तक कोई भी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिल रहा है, एक भी प्रूफ नहीं मिल रहा है। तो इससे, और डार्विन ने खुद ही लिखा है, उसकी किताब अगर आप पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें एक चैप्टर दिया है, उसका नाम है चैलेंजेस टू माई थ्योरी। मेरे जो मैंने जो थ्योरी दिया है इसके खिलाफ क्या क्या आवाज उठ सकती है, उसको लिखा है, खुद भी लिखा है। हमारी आंख जो है, आंख जो है कैसे इवोल्यूशन से बन सकती है आंख, मेरे हिसाब से ये संभव नहीं है। अरुण खुद लिख रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जो कि भगवान के रचना के बिना संभव है ही नहीं, अपने आप नहीं बन सकती। तो इस बात से तो धीरे धीरे जो है प्रभुपाद ने नहीं माना इसको, वैदिक कल्चर नहीं मानता है इसको। हम बंगल से आए हैं, हमारे इतिहास की किताब में भी पढ़ते हैं, पढ़ते कि नहीं बताइए, क्योंकि जबकि ये फॉल्स है, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो हमें गलत पढ़ाया जा रहा है। डार्विन क्या बताता है, डार्विन बताता है कि जिराफ कैसे बना, कैसे बना पता है किसी को?
स्ट्रगल कर,
हैं?
स्ट्रगल कर।
हाँ, कैसे?
पहले वो छोटा सा एक जानवर था,
पहले जानवर था, गर्दन उतनी लंबी नहीं थी, कैसे लंबी हो गई?
सारे घास को चर गया, खत्म हो गया,
नीचे का घास खत्म हो गया, खाते
खाते। तो फिर जो उसके बाद की लोग हुए थे ऊपर के पेड़ों को देखने लगे।
हाँ, तो ऐसे गर्दन ऐसे ऐसे करते करते गर्दन खींचती गई, खींचती गई, खींचती गई, इतनी लंबी हुई कि जिराफ बन गया। लेकिन अगर उसको पानी भी तो पीना होगा ना, तो नीचे भी तो झुकना है, तो गर्दन से डूबनी भी चाहिए, जितनी बार खाएगा उतनी बार पानी पिएगा, ये कि नहीं? कितना चाइल्डिश आइडिया है, आप सोच सकते हो। बताता है व्हेल मछली कैसे बना, पोलर बियर से व्हेल मछली बन गया, सोचिए। आज का पोलर बियर व्हेल क्यों नहीं बन रहा है, व्हेल से ही व्हेल बन रहा है, हम देखते हैं। व्हेल मछली को जन्म देती है। कितना रबिश आइडिया है, कितना नॉनसेंसिकल आइडिया है, लेकिन हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ब्लाइंडली इसको। बताते हैं कि कैसे जो है वो चिड़िया कैसे बना, चिड़िया कैसे बना, तो बताता है कि पहले रेंगने वाले होते थे जी, रेंग के चलते थे, तो पेड़ों पे चढ़ गए, और जब उनको दिखा कुछ कुछ खाना आहार दिखा, तो ऐसे जम करके पकड़ने का प्रयास किया, तो उनके पंख विकसित हुआ। लिखा है मैंने किताब में, नहीं बता रहा, किताब में लिखा हुआ। और इसको हम लोग वैज्ञानिक थ्योरी मानते हैं। हम कहते हैं कि हम वेदों में विश्वास क्यों करें, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हम विश्वास कर रहे हैं डार्विन की थ्योरी पे, कर रहे हैं कि नहीं? ये भी विश्वास ही है, इसका कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं, नो ऑब्जर्वेशन। उसकी किताब में, डार्विन ने जो किताब लिखी है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें 800 बार शब्द का इस्तेमाल किया आई बिलीव। तो ये जो थ्योरी ऑफ स्पीशीज है, दिस इज नॉट साइंटिफिक थ्योरी, इट इज डार्विन्स थ्योरी, डार्विन्स बिलीव एक्चुअली। और आज का विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि भगवान नहीं है, एजम्पशन ही है, साइंस का एजम्पशन ही है। वहीं से साइंस की शुरुआत होती है, विद एजम्पशन दैट वी कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग बेस्ड ऑन केमिकल्स एंड फिजिकल नेचुरल लॉज। देयर इज नो सच थिंग हायर बीइंग लाइक गॉड। उसे शुरुआत ही शुरू में ही हटा दिया। बट दैट इज नॉट साइंस। साइंस क्या है? साइंस मीन्स ओपन ऑलवेज फॉर द ट्रूथ। साइंस मीन्स ऑलवेज ओपन फॉर ट्रूथ। इफ ट्रूथ कम्स हायर रियलिटी, अगर बाद में प्रूव किया जाता है कि हाँ देर इज हायर रियलिटी, साइंस मस्ट एक्सेप्ट इट, इजंट इट? अदरवाइज इट्स नॉट साइंस, इट्स अ रिलीजन, डॉगमेटिज्म, इजंट इट? कि नहीं, मैं जो मानता हूँ वही सही है, हमने जो डार्विन ने जो 150 वर्ष पहले बोल दिया वही सही है। दिन पर दिन जब वैज्ञानिक रिसर्च हो रहे हैं, कई चीजें ऐसी मिल रही हैं जिससे प्रमाण मिल रहा है कि डार्विन वाज रॉन्ग, लेकिन हम उसको मेंटेन किए हुए, नहीं नहीं हम बदलेंगे नहीं। दिस इज ऑल्सो रिलीजन, रिलीजन ऑफ एथिज्म, एथिस्टिक रिलीजियन इजंट इट, ये भी भर नहीं है तरह का अंधविश्वास है, अंधविश्वास इन एथिज्म भगवान नहीं है। अगर हम प्रूफ भी कर रहे हैं कि भगवान है फिर भी हम नहीं, प्रूफ हो गया हाँ भगवान है लेकिन फिर भी मैं नहीं मानूंगा, ये है आजकल का सिचुएशन। तो आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा, ध्यान से नोट कीजिएगा है ना कि क्या दिखाया था, अगली बार पूछूंगा। यस
I want to comment on this point that this is just an aspect to see of a government that it isn't weak. If we left with the industrialization, then no revolution will come. Government will not survive in the society. Because you take the example of Tata Reliance and all that, all these companies, IIM and other companies, they are providing lot of opportunities to the common person. Like you can see the you getting jobs in Delhi, metro cities, and other in Delhi and other metro cities. So this is just the aspect to see that it is a great. I think agar ye nahi hoga, industrialization nahi hogi mere hisab se. So the society mein changes nahi hoga, upliftment nahi hogi. I think. So. On the next point, I want to comment on this point that. चेंज ऑफ आर्ट आपने कहा कि वो नहीं है स्टडी भी कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आर्ट को चेंज करते हैं आई थिंक सो वी टेक गिव द क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स हुएवर दे आर गोइंग टू टेक द एजुकेशन फ्रॉम द एनी सोसाइटी और एनी स्कूल एंड कॉलेजेस इफ दे टेक द क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम देयर ट्यूटर्स दे कैन चेंज देयर आर्ट डेफिनेटली बिकॉज
बट ट्यूटर्स दे समटाइम्स डोंट हैव क्वालिटी हाउ दे कैन गिव क्वालिटी But the problem is there, main root causes we are discussing. I am not saying that who is responsible. But the point is that there is problem. That's what we are discussing. You understand the point?
I am getting your point very well. Yeah. My aspect is something else. If we tell there is no course to change the heart, this is not the point.
Where is the course? Tell me.
Study itself is the course. Study and
You are studying physics. Okay? So physics, mein, where is the question of heart? In physics. Where is the question of humility in physics? Where is the question of respect in physics? Mathematics, which is equation will apply for respect?
I think these are not the one or two subjects we study in our
own. What else you study?
Listen to electrical and technical.
I'm listening.
Okay.
I'm
listening. Physics, chemistry are not the two subjects which
what else you have?
We study social
sciences. Social sciences, what you study? Geography.
Geography, history,
what history you study? Last time we discussed history. What history you study? There is war, there is attack, violence.
Yes, yes.
But how to solve this problem?
We read those causes why the war was happened, why the war.
So why it happened?
We can understand if we read that.
Yes. Why it happened? It is explained in your history book. It is only information is given. This happened. Please try to understand, we are not here for debate, we are here to solve the problem. I am not telling that here we are not have, going to have, if we don't open up our heart, then we are going to waste time on it. Try to understand. History book gives information. This happened. Why this happened? How this happened? Who was in the problem? Who did mistake? How he did mistake? That detail is not there.
But if we read that carefully, we can understand.
No. We are seeing the result where people are understanding. You see by the result, we should not talk in air. People are not understanding. You see the today's situation, that's why we discussed last time, so many slides they have shown, the problem of the world today.
Sir,
we have
to know, sir, India was a very prosperous nation. और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था यूके में स्टार्ट हुआ था, और यूके में इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए स्टार्ट हुआ था बिकॉज उन्होंने इंडिया से सारे रॉ मटेरियल्स को ले जाके कंपनियां बनाई, तो वो पूरी तरह से क्या था मिस यूटिलाइजेशन ऑफ अनदर कंट्री
perspective. We are going to the root cause. Today, see, global warming, just like last time we had discussed. Try to understand, global warming. So global warming, what is the root cause? Even today, you can go and see, even that presentation, the root cause is industrialization. Now, you want to make people happy, but the earth is getting warmer. By giving some money, will you make them happy? Try to understand. Just by giving money, I cannot reduce the temperature of the earth. Now the sea level will go high. So we can't solve those problems. And what is the root cause of those problems? Ozone is getting penetrated. Aaj se hazaro varsh tak we had so many civilizations, ozone was never penetrated. But today, in last 30, 40 years, 50 years, we see we are getting hole in ozone. How you are going to protect people from them? The population which was fixed to 30 crore in 1920, in the last 80 years it has gone 100 crores increment. So many drastic changes have taken place in the last 100 years. We need to think over this point. Please try to understand. We are trying to give this lesson. Whatever may be the reason, you can think, you are better, you all are intelligent people. You can go and think. We are just showing you. You think and find out the root cause. And you find the root cause starts from here. Unemployment, the root cause is here. Actually, there is no unemployment. The food crisis, the root cause is here. Actually, there is no food crisis. Food crisis is because of the misuse of the heart. People greed, it's greed completely. Sufficient food is being generated. Still today also, even the population is so high, still, last time we have discussed how. The point is that we are here to show you all, this is the problem, this is the problem. Now, it's up to you to accept it or not. But the problem is there, and we are seeing day by day it is increasing. Still, if you don't understand, we are going to add into the problem. And we will be the responsible. Today, you see water crisis. Every system is failing. Every system is failing. And the science is doing so much advancement. So the people should be happy. They were diligent. Quality of life should increase. People's anxiety level should go down, isn't it? But science is making advance. In spite of that, the problems are being maintained. The main reason is not science. Because science is advancing, but the heart is not advancing. Heart is getting degraded by it. So therefore, the scientific discoveries are being misused. So that is our question. And that can be solved only, like one more point we discussed, that like a greed. Greed is the cause of corruption, isn't it? Leave about the job or whatever you are saying, but the corruption. Corruption is a big problem. What is the root cause of corruption? Greed. Now how will you solve this? By making laws? But if lawmaker breaks then? Who will control him? That's what last time we have discussed. But if God is there and if people know and they are trained how to see God, how to understand His, that's what we are doing today. The people are trained that yes, there must be a God, and He is there and watching, and He is going to question us for all our misdeeds. Then people have to think before the Lord. So it's all related. It's not that we say that no, this problem has nothing to do with the God or spirituality. No. Very much related. Very much. So in all the fields we are seeing, even the America, you see, day by day, we discuss the statistic, 10 crore people are visiting psychiatrists in America. Why? So much industrialization is there, but why people are not happy? So that main reason is that people are not happy because they are not trained in spiritual science. Now, anyway, so we discuss the advantages of bringing God in our life. We are not against advancement, you understand? Advancement is very good, whatever happening. But because of greed, greedy people, the heart is becoming, you know, one. Those who have more, they want more and more and more and more. And therefore those who have less, they are becoming more poorer day by day, more poorer, poorer and poorer. And in that pursuit of rich becomes more richer, we have created a society of competition. Heavy competition, huge competition. This competition is killing the life of youth. So, another way of this competitive society is also a product of greed. That we'll discuss in some other class. How? Due to the greed, this competition has become so intense today. So we'll discuss in detail, we'll come to your point again, where we'll discuss about the more detail, how the all the pollution of the heart. Heart pollution, six things we discussed last time. Lust, greed, anger, envy, pride and illusion. There are the six things, these are six diseases of the heart. The, all the wars are happening around the country. The root cause is pride and anger. So these are the things also need to be trained people how to control. Kaise isko control kare, pride or anger ko kaise control kare. Now we discuss, we will see this video about the existence of God. तो ये वीडियो जो है ये छः पार्ट में है, टोटल एक घंटे का है, लेकिन मैं आपको केवल एक पार्ट दिखाऊंगा, वन पार्ट ऑनली। उसमें बताया गया है कि उसमें क्या होगा, मैं आपको भी थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा कि एक सेल, सेल जानते हैं सेल कितना छोटा होता है, आप इमेजिन कीजिए, जैसे कितना छोटा अगर कोई आप डिब्बा लेंगे, डिब्बा उसमें कितना पानी आएगा, बहुत कम पानी आ रहा है, उतने पानी में 4 बिलियन सेल्स एग्जिस्ट, 4 बिलियन सेल इंग्लिश में जवाब है, तो सोचिए कितना छोटा सेल का साइज होगा, ठीक है। अब उस सेल के अंदर क्या है, उस सेल के अंदर क्या है, इतने छोटे सेल के अंदर, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। और जो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने रिसर्च किया, एक बार एक ऐसा समय था जब वो साइंटिस्ट खुद ही भगवान को रिजेक्ट कर रहा था, लेकिन बाद में एट द एंड आफ्टर 50-20 इयर्स व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा इतना कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी काम कर रहा है सेल के अंदर, उसे विश्वास नहीं होती है बाय चांस अपने आप कैसे हो। तो उसका स्टेटमेंट्स भी होगा इसमें, आप वैज्ञानिक के तरफ से आप देखिए क्या है।
scientists have ruled out the possibility that random chemical reactions in the primordial waters of the early Earth had once produced complex protein molecules and the first living cells. Yet despite the limitations of blind chance, Origin of Life researchers continued their efforts to find a natural process that could have generated the first life.
The problem with biological origins is, for a very long time, I would say, it'll be interesting to me just because of the scale of the problem, the importance of it. Where did we come from? Why are we here? All that kind of question. Approached from the point of view of natural science.
During the late 1960s and throughout the 70s and early 80s, Dean Kenyon was one of the leading chemical evolutionary theorists in the world. And like others in this field, he was trying to explain how life on Earth began through a purely natural process.
In 1969, Kenyon co-authored the book Biochemical Predestination. In it, he presented an intriguing naturalistic explanation for the origin of complex protein molecules, the primary components of living cells. Kenyon wrote, "Life might have been biochemically predestined by the properties of attraction that exist between its chemical parts, particularly between amino acids and proteins."
At the time that biochemical predestination came out, I, co-author, was totally convinced that we had the scientific explanation for origins.
Kenyon proposed that the chemical properties of the amino acids caused them to be attracted to each other, forming the long chains that became the first proteins, the most important components in the living cell. And this meant that life was effectively inevitable, predestined by nothing more than chemistry.
Many scientists embraced Kenyon's ideas, and over the next 20 years, Biochemical Predestination became a best-selling text on the theory of chemical evolution. Yet 5 years after the book's publication, Kenyon quietly began to doubt the plausibility of his own theory.
It was during that whole period of time that my doubts about certain aspects of the evolutionary account became apparent when coming into contact with a powerful counter-argument given to me by one of my students, and I could not refute that counter-argument.
Kenyon was challenged to explain how the first proteins could have been assembled without the help of genetic instructions. In living cells today, chains of amino acids are not formed directly by forces of attraction between their parts, the scenario Kenyon envisioned on the early Earth. Instead, another large molecule within the cell stores instructions for sequencing the amino acids and proteins. It is called DNA.
Initially, Kenyon believed proteins could have formed directly from amino acids without any DNA assembly instructions. And that's why so many scientists were excited about his theory. But the more he and others learned about the properties of amino acids and proteins, the more he began to doubt that proteins could self-assemble without DNA.
In DNA, Kenyon encountered a molecule with a property he could not explain through natural processes. For locked securely within its double helix structure is a wealth of information in the form of precisely sequenced chemicals that scientists represent with the letters A, C, T, and G for adenine, cytosine, thymine, and guanine. In a written language, information is communicated by a precise arrangement of letters. In the same way, the instructions necessary to assemble amino acids into proteins are conveyed by the sequences of chemicals arranged along the spine of the DNA. This chemical code has been called the language of life, and it is the most densely packed and elaborately detailed assembly of information in the known universe.
Like other scientists working on the origin of life, Kenyon realized he had two choices. Either he had to explain where these genetic assembly instructions came from, or he had to explain how proteins could have arisen directly from amino acids without DNA in the primordial oceans. And in the end, he realized he could do neither.
It's an enormous problem how you could get together in one tiny sub-microscopic volume of the primitive ocean, all of the hundreds of different molecular components you would need in order for a self-replicating cycle to be established. And so my doubts about whether amino acids could order themselves into meaningful biological sequences on their own without pre-existing genetic material being present just reached, I guess for me, the intellectual breaking point sometime near the end of the decade of the 70s.
As Kenyon re-evaluated his theory, new biochemical discoveries further weakened his conviction that amino acids could have organized themselves into proteins.
The more I conducted my own studies, including a period of time at NASA Ames Research Center, the more it became apparent that there were multiple difficulties with the chemical evolution account. And further experimental work showed that amino acids do not have the ability to order themselves into any biologically meaningful sequences.
Faced with mounting difficulties in his own theory, and a growing body of scientific data about the importance of DNA, Kenyon was forced to confront the absolute necessity of genetic information.
The more I thought about the enormous problem that all of us who worked on this field had neglected to address, the problem of the origin of genetic information itself, then I really had to reassess my whole position regarding origins.
For Dean Kenyon, a new question became the focus of his search for life's origin. What was the source of the biological information in DNA?
One could get at the origin of the messages, the encoded messages within the living machinery, then you would really be on to something far more intellectually satisfying than this chemical evolution theory.
Yet Kenyon faced a narrowing set of options, for he realized that as with pure chance, natural selection was also limited in its creative power. By definition, natural selection could not have functioned before the existence of the first living cell, for it can only act upon organisms capable of replicating themselves, cells equipped with DNA that pass on their genetic changes to future generations.
Without DNA, there is no self-replication. But without self-replication, there is no natural selection. So you can't use natural selection to explain the origin of DNA without assuming the existence of the very thing you're trying to explain.
Natural selection, chance, and his own theory of self-organization had all failed to explain the origin of genetic information. Now Kenyon saw only one alternative.
We have not the slightest chance of a chemical evolutionary origin for even the simplest of cells. So the concept of the intelligent design of life was immensely attractive to me and made a great deal of sense, as it very closely matched the multiple discoveries of molecular biology.
In the years since Kenyon's rejection of chemical evolution, science has revealed the details of an entire system of information processing that bears the hallmarks of intelligent design. With computer animation, we can enter the cell to view this remarkable system at work. After entering the heart of the cell, we see the tightly wound strands of DNA, storehouses for the instructions necessary to build every protein in an organism. In a process known as transcription, a molecular machine first unwinds a section of the DNA helix to expose the genetic instructions needed to assemble a specific protein molecule. Another machine then copies these instructions to form a molecule known as messenger RNA. When transcription is complete, The slender RNA strand carries the genetic information through the nuclear pore complex, the gatekeeper for traffic in and out of the cell nucleus. Messenger RNA strand is directed to a two-part molecular factory called a ribosome. After attaching itself securely, the process of translation begins. Inside the ribosome, a molecular assembly line builds a specifically sequenced chain of amino acids. These amino acids are transported from other parts of the cell and then linked into chains often hundreds of units long. Their sequential arrangement determines the type of protein manufactured. When the chain is finished, it is moved from the ribosome to a barrel-shaped machine that helps fold it into the precise shape critical to its function. Folded into a protein, it is then released and shepherded by another molecular machine to the exact location where it is needed.
This is absolutely mind-boggling to perceive at this scale of size such a finely tuned apparatus, a device that bears the marks of intelligent design and manufacture. And we have the details of an immensely complex molecular realm of genetic information processing. And it's exactly this new realm of molecular genetics where we see the most compelling evidence of design on the Earth.
तो इस वीडियो में आप लोगों को पता नहीं कितना स्ट्रेस करता है, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, तो बताएंगे कंक्लूजन ऑफ वीडियो।
साइंस कैन नॉट गो बियॉन्ड समथिंग।
अभी हमने क्या देखा वीडियो में, सेल के अंदर गए थे, है ना? तो सेल के अंदर कितनी सारी मशीन काम कर रही है, है ना? एक फैक्ट्री चल रही है सेल के अंदर। तो आप सोचिए कि इतनी सारी मशीन जो कार्य कर रही है, उसका डिजाइन चाहिए ना, कोई मशीन के लिए बुद्धि चाहिए बनाने के लिए, है कि नहीं? ये बुद्धि कहाँ से आ रहा है? तो ये वैज्ञानिक थे जिन कैनियन इनका नाम है, इन्होंने बोल क्या बोल रहे थे कि देयर मस्ट बी सम इंटेलिजेंट पर्सन बिहाइंड दिस। वैज्ञानिक कैन साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड? यस, कैन बिलीव। मैंने देखा है ना, इसके अलावा कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि भगवान पे विश्वास करते हैं और भगवान वास्तव में हैं, क्योंकि अगर आप इस संसार को ध्यान से देखेंगे, इस संसार को आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो कि विश्वास नहीं करेगा भगवान में। अगर भगवान नहीं है तो ये सारी चीज़ें इतनी व्यवस्थित रूप से कैसे बनी? जैसे मान लीजिए कि आप अपना चेहरा देखो जाकर आईने में, कभी देखा आपने चेहरा आईने में? अपना चेहरा देखिए कितना अच्छा बनाया गया है चेहरा आपका, बिल्कुल इधर जैसा है बिल्कुल वैसा ही इधर भी है, जैसे लगता है नाप के बनाया गया है ना, मेजर करके बनाया गया है। इधर आँख जो है जितनी बड़ी है, इसकी ये आँख भी उतनी बड़ी है, और पैर लगो इधर कान है इधर कान है, सर जितना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ये सर, ये सब डिजाइन है कि नहीं? और डिजाइन के लिए इंटेलिजेंस चाहिए ना, अपने आप डिजाइन होता है किस चीज़ का? डिजाइन का अर्थ ये है कि वहाँ पर इंटेलिजेंस बुद्धि की जरूरत है, ये कॉमन सेंस है। इसके लिए हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं। आप अपने रूम में जाओगे कमरे में और अगर वहाँ पर देखते हैं कि आपके कमरे आपके टेबल पे एक बहुत सुंदर घड़ी रखी हुई है, आप क्या सोचते हैं? बाईचांस आ गया, आप सोचते हैं कि बाईचांस है? क्या सोचते हैं? कोई रख के गया है और किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस घड़ी को बनाया है? तो ये सोचा नहीं, अपने आप आपको ये हवाई जहाज अगर आप देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि अपने आप हवा का तूफान आया, बहुत सारे लोहे रखे हुए थे आपस में जुड़ के हवाई जहाज बन गया, ऐसा हो सकता है? मान लीजिए कि 2 लाख वर्ष भी अगर आप इंतजार करें, सारे लोहे रख दीजिए और 2 लाख वर्ष या 10 लाख वर्ष भी इंतजार कीजिए, क्या लोहे अपने आप मिल के हवाई जहाज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अपने आप इतना इतना अच्छा जो है मशीन तैयार नहीं हो सकता, हमारा शरीर अपने आप नहीं बन सकता, इसके लिए डिजाइन की जरूरत है, इसके लिए जो है वो कोडिंग करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, हर चीज़ नाम के बनाया जाता है। और हमारा चेहरा देखिए कितना सोच समझ के बनाया हुआ है, हर चीज़ हमारे शरीर का हर एक सिस्टम है, उसका पर्पस है कि नहीं? आँख के सामने ये जो हेयर से इसका भी क्या है? पर्पस है। आईलिड्स है बार बार ब्लिंक करती, इसका भी क्या है? पर्पस है। हर चीज़ का पर्पस है और पर्पस के अनुसार डिजाइन किया हुआ है कि नहीं? हमारे अंदर आप सभी का डाइजेशन सिस्टम है, ये परफेक्ट सिस्टम है। सिस्टम इज इंटेलिजेंस, डेवलप सिस्टम, विदाउट इंटेलिजेंस यू कांट कंसीव द सिस्टम। तो किसका इंटेलिजेंस है? कृष्ण का, भगवान का इंटेलिजेंस है। सो इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। अरे कितना सुंदर, आप हमारी आंखें जो है यहाँ पे रखी गई है कि नहीं? सपोज अगर आंखें यहाँ नहीं होती तो क्या होता? मान लीजिए आँख इधर होता है यहाँ और कान यहाँ होता है तो क्या होता? अब मान लीजिए खाना खाने के क्या करते हैं, ऐसे खाना को इधर ले जाते हैं देखते हाँ ठीक है खाना ठीक है, फिर ऐसे ला के खाते है कि नहीं? तो कितना अच्छा परफेक्ट सिस्टम बनाया है भगवान, हर चीज़ बिल्कुल सही जगह पर बिल्कुल सही तरीके से डिजाइन किया गया। ये इन बातों को देखते हुए और ऐसे कई ऐसी बातें हैं हमारे पास और सारे बहुत सारे वीडियोज हैं इसको देखते हुए जो है, जैसे ये यहाँ पे फूल दिखाया गया है, ये क्या है? पेंटिंग है ना? पेंटिंग को, ये फूल का एक पेंटिंग है, इसको बनाने के लिए बुद्धि चाहिए? अपने आप को एक पेंटिंग बनता है नहीं, उसके लिए बहुत बुद्धि चाहिए, दिमाग लगा के बनाना पड़ता है कि नहीं? और इस पेंटिंग में केवल एक ही क्वालिटी है, कलर। अब देखिए ये क्या है? पेपर रोज। पेपर रोज को बनाने के लिए दिमाग की जरूरत है और इसमें दो चीजें कलर और सेल। और ये क्या है? एक्चुअल फ्लावर है। और इसमें आपको 5 चीजें कलर सेल टेस्ट टच एंड फ्रेग्रेंस। तो क्या इसको बनाने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है कि नहीं? इसमें मुश्किल है सोचना, इतना इतना आसानी से समझ सकते हैं कि किसने बनाया है इसे, किसकी बुद्धि से ये फूल बना? इसीलिए आइंस्टीन वर्ल्ड के सबसे फेमस साइंटिस्ट, इनसे बुद्धिमान व्यक्ति आज तक कभी वैज्ञानिक कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ, मानते हैं इस बात को? क्या पढ़ पढ़िए क्या बोल रहे हैं अपने से? आइंस्टीन ने बोला, कई स्टेटमेंट्स दी, देयर इज परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड द क्रिएशन, आइंस्टीन ने बोला। लोग बोलते आई डोंट बिलीव इन गॉड बिकॉज आई कांट सी हिम, तो हम हो सकता है डायरेक्ट नहीं देख पाए, लेकिन जैसे मान लीजिए कि हवा भर है, आप जाए पेड़ पे पत्ते हिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हवा भर है, हवा को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं इफेक्ट से काउज को समझ सकते हैं, है कि नहीं? जस्ट लाइक आप ये ट्यूबलाइट है, यहाँ पे आपको कोई वायर नहीं दिख रहा, दिख रहा कोई वायर? इसका मतलब क्या ट्यूबलाइट अपने आप चल रहा है? ट्यूबलाइट जल रहा है इसका मतलब इसका वायर है इसके अंदर दीवार के अंदर या कहीं भी कुछ तो कनेक्शन जा रहा है कहीं से, हम देख नहीं पा रहे और बात है, लेकिन ट्यूबलाइट जलना है अपने आप में एक प्रमाण है कि कहीं ना कहीं से तो सोर्स है पावर का, है कि नहीं? बताइए प्रमाण है ना, कहीं ना कहीं पावर हाउस है जहाँ से कि पावर आ रहा है, अब कहाँ है ये अलग बात है, पर बिना देखे भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कोई पावर हाउस जरूर होगा जहाँ से पावर आ रही है। उसी तरह से कि क्रिएशन, भगवान के क्रिएशन को देख के इतना बुद्धिमानी से बनाया गया है ये संसार, इसको देख के हम स्पष्ट बता सकते हैं देयर मस्ट बी क्रिएटर, क्रिएटर होना चाहिए। इस संसार में कोई ऐसी चीज दिखाइए, अब यहाँ पे किस रूप में कोई ऐसा चीज दिखाई जिसका कोई क्रिएटर नहीं है? कोई ऐसी चीज दिखाई? माइक है इसका, इसको किसी ने बनाया है, लैपटॉप किसी ने बनाया है, प्रोजेक्टर किसी ने बनाया है, फैन किसी ने बनाया है? आप फैन देखते तो कोई ये नहीं सोच सकते अपने आप बन गया, बाई चांस हो गया, लेकिन जब हम प्रकृति की चीजों को देखते तो बोलते बाई चांस हो गया। अगर हम एरोप्लेन बनाते हैं तो बोलते हैं कि हमें नोबेल प्राइज चाहिए, और भगवान जो है इतने पक्षी बना रखे जो उड़ते हैं बोलते हैं बाई चांस हो गया, है? मान लीजिए कि आप परीक्षा, एरोप्लेन का प्रिंसिपल क्या है? टेकिंग फ्रॉम द बर्ड्स, चिड़ियों को कॉपी कर रहे हैं, है कि नहीं? तो कॉपी करने के लिए नोबेल प्राइज चाहिए। मान लीजिए आप दोनों परीक्षा में बैठे हुए और ये आपका कॉपी कर रहे हैं, तो इनको नोबेल प्राइज मिल रहा है कॉपी करने के लिए, है ना? तो उनको क्या प्राइज मिलना चाहिए, और उन्होंने बाई चांस लिख दिया, है ना? आप बाई चांस लिखे जा रहे हैं और ये जो कॉपी कर रहे हैं उसका इनको नोबेल प्राइज चाहिए। तो क्योंकि विज्ञान क्या है? कॉपिंग द नेचर। विज्ञान क्या कर रहा है? नेचर का कॉपी कर रहा है। जितने सैटेलाइट भेज रहे हैं इसका क्या है प्रिंसिपल? क्या है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के आधार पर हम सैटेलाइट भेज रहे हैं। ग्रेविटेशन लॉ को किसने बनाया? फिर किसी वैज्ञानिक ने बनाया, पहले से ही था ये। ये नहीं कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे तो एप्पल नीचे गिरा, तो नीचे न्यूटन ने क्या सोचा? ये नीचे क्यों गिर रहा है? उन्होंने नहीं सोचा ठीक है बाई चांस गिर गया, मुझे क्या लेना है इससे, ऐसा नहीं सोचा ना? देयर मस्ट बी सम रीजन लॉ। तो लॉ अगर है तो लॉ को कोई बनाने वाला भी तो होना चाहिए, आपको कोई ऐसा लॉ दे देखा जो अपने आप बन गया? देखा कोई लॉ अपने आप बन गया, बाई चांस लॉ बन गया, ऐसा भी देखा आपने? नहीं, लॉ बनाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और उसमें भी इतना परफेक्ट लॉ है। आप देखिए, ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ और है वहाँ पे कुछ और है, नहीं, यूनिवर्सल लॉ, कैपिटल जी कॉन्स्टेंट, 36 constants in our science book. A constant, a mathematical accuracy, mathematically accurate, electron ka, neutron ka or proton ka mass, kya hai? Nucleus mein, neutron mass or proton mass kya hota hai? Barabar hota hai, hota hai na? Neutron ka mass kitna hota hai? 10 to the minus 31 सच्ची इतना कम मास है फिर भी बराबर है कितना साइंटिफिकली डिजाइन किया हुआ है और बताया जाता है अगर न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास अगर 0.001% भी अगर वैरी करेगा तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा सॉलिड का एग्जिस्ट नहीं करेगा सॉलिड हो ही नहीं सकता सब लिक्विड हो जाएगा तो ये विज्ञान है कि नहीं कितना डिजाइन बनाया गया बिल्कुल कॉन्स्टेंट तो इसलिए ये बाई चांस नहीं हुआ और बाई चांस तो ये बोगस है बाई चांस कोई चीज़ कैसे हो सकती है आप अगर बाई चांस ही सब कुछ हुआ है तो इसका मतलब कि आप लोग यहाँ पर बाई चांस आ गए है कि नहीं सब बाई चांस हो रहा है हम लोग यहाँ पर बाई चांस बैठे हुए हैं और बाई चांस यहाँ से चले जाएंगे है कि नहीं और बाई चांस आप लोग आई एस के एग्जाम में बैठेंगे और बाई चांस आपके एग्जाम में आंसर बाई चांस देंगे और बाई चांस प्रोफेसर जो चेक करेगा वो आपको मार्क्स बाई चांस देगा है और बाई चांस आप फेल हो जाएंगे और बाई चांस आप पास हो जाएंगे और बाई चांस आपको जॉब मिल जाएगी बाई चांस जो आपको डिग्री मिल जाएगी कितना नॉनसेंस है ये और आप बोलते हो सब कुछ बाई चांस मान लीजिए कोई किसी ने मर्डर किया और जज के सामने गए जज बोल तुमने मर्डर क्यों किया बोला बाई चांस हो गया मैंने नहीं किया बाई चांस हो गया सब कुछ बाई चांस होता है विज्ञान के अनुसार ये भी क्या हो गया बाई चांस हो गया मजिस्ट्रेट क्या बोलेगा ठीक है बाई चांस मैं तुम्हें शादी फांसी की सजा देता कितना गलत आइडिया है हम सब तो सोचना चाहिए इसे सोचना चाहिए कि नहीं बताइए सब कुछ बाई चांस हो गया ये कितना गलत आइडिया है अपने आप में वास्तव में कुछ भी बाई चांस नहीं होता है कुछ भी बाई चांस नहीं होता और अगर चांस की जहां तक बात आती है तो चांस भी तो तब बात कर सकते हैं जब आपको कम से कम दो प्रोबेबिलिटी हो है कि नहीं तभी तो आप चांस की बात कर सकते हैं लेकिन हम ब्रह्मांड में देखते हैं कि कई कोई ऑप्शन नहीं है चॉइस नहीं है हर चीज एक ही तरीके से हो रही है सूर्य जो है वो सुबह निकलता है कि नहीं और शाम में अस्त होता है सुबह सूर्योदय होता है शाम में लोग ये तो बाई चांस नहीं है बाई चांस मतलब कभी दोपहर 12 बजे सूर्य अस्त हो गया कभी 8 बजे हो गया बाई चांस तब कह सकते बाई चांस हो रहा है लेकिन नहीं लेकिन चूंकि फिक्स है इसका मतलब है कि बाई चांस नहीं है इसके पीछे कोई कंट्रोल कर रहा है इसको फुल द कंट्रोलर हमें देखने की जरूरत नहीं भगवान ने इतनी व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था की हमारे हर तरह की व्यवस्था आप देखिए भगवान का विज्ञान कितना जबरदस्त है समुद्र में पानी है उसको सूर्य की रोशनी से उस पानी को सुखाते हैं और पानी को आकाश में ले जाते हैं वहाँ बादल बनता है और बादल पूरे पृथ्वी पे वर्ष फैलाया जाता है हवा के द्वारा जब बादल फैल जाता है फिर उसको फिर से कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा उसको नीचे गिराया जाता है वो पानी नीचे आता है सब पानी सब लोग पीते हैं और मान लिया भगवान बंद करते सप्लाई बाय चांस बंद हो गया सप्लाई बाय चांस बादल नहीं बनेंगे तो क्या होगा समुद्र के पानी को कितना हम बांटेंगे, कैसे बांटेंगे बताइए, क्या कर पाएंगे संभव, ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो बाई चांस नहीं हो रहा है, हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, आप जमीन में एक अनाज डालते हो, एक बीज, मैं आपको सोचने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोचिए एक अनाज डालते हैं आप, बाकी आप कुछ नहीं करते, अपने आप अनाज जमीन से पौधा निकलता है, उसके बाद हजारों उसमें अन्न फल लगते हैं, करते हैं कि नहीं, ये विज्ञान नहीं है, इट इज साइंस, प्रोग्रामिंग किया हुआ है, सारा प्रोग्रामिंग किया हुआ है, और ये बीज डालेंगे तो ये पौधा निकलेगा, ये बीज डालेंगे तो ये पौधा निकलेगा, और मिट्टी वही है कि नहीं, मिट्टी तो वही है ना, उसी मिट्टी में अगर आप खरबूजे का बीज डाल दीजिए तो इतना बड़ा खरबूजा निकलेगा, मिट्टी तो वही है, उसी में अगर आप गेहूं डाल दीजिए गेहूं निकलेगा, क्या ये इट्स नॉट अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, ये विज्ञान कहाँ से आ रहा है, और हम उसका कॉपी कर रहे हैं, और कॉपी करके कई तरीके रिसर्च और आविष्कार कर रहे हैं, और उसके बाद उसी आविष्कार से भगवान को ही हटा रहे हैं। तो भगवान ने देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था की हमारे लिए, तो हम क्या बोलते हैं, भगवान को ही सब पत्ता साफ कर देते हैं, भगवान नहीं है, तो भगवान नहीं है तो आप बताओ कैसे इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, बताइए किसने बनाया इस संसार, जब हम बोलते हैं वैज्ञानिक लोगों को कि भगवान ने बनाया, तो पूछ जाए तो भगवान को किसने बनाया, पूछते हैं ना, उसी तरह से अगर मान लीजिए तो ठीक है, नहीं हम नहीं मानते कि भगवान, भगवान को बनाया नहीं जाता है, भगवान तो हमेशा से ही, क्योंकि बनाने और बिगाड़ने का कॉन्सेप्ट जो है वो इस संसार में, ये भौतिक जगत है जहाँ पे कि जन्म होता है और मृत्यु होती है, बनता है और बिगड़ता है, लेकिन इस भौतिक जगत से परे एक आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे न तो जन्म होती है न मृत्यु होती है, यहाँ तक कि इस संसार में जो आत्मा होती है उसका भी जन्म और मृत्यु नहीं, इस तक तो कोई जानता ही नहीं, समझता ही नहीं, यहाँ तक कि एनर्जी भी, एनर्जी जो है वो भी कंजर्व रहती है कि नहीं, नष्ट नहीं होती, तो इसी तरह से भगवान जो हैं वो हमेशा से विद्यमान हैं, और उनके वो जो है ब्रह्मांड की रचना करते हैं, तो जो नास्तिक लोग बोलते हैं नहीं हम नहीं मानते इसको, अगर तुम नहीं बिना मानते तो तुम बताओ, तुम बताओ कैसे बने, तो बोलते हैं बिग बैंग से बने हैं, बिग बैंग क्या है, तो पूछते हैं कि है एक ऐसा इसे इनफाइनाइटिसिमल वॉल्यूम, बहुत छोटा, बहुत छोटा, सोचिए ध्यान से सोचिए, इतना छोटा है कि आप सोच नहीं सकते और उतना मास और इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट टेम्परेचर, और क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, जब ब्लास्ट हुआ तो क्या बना, उससे हम सब बन गए, एक तरह से बता रहे कि एक बहुत छोटा, बहुत छोटा, सब बहुत छोटा मतलब ऑलमोस्ट नथिंग है ना, ऑलमोस्ट नथिंग, तो ये इस सिद्धांत के अनुसार, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग, मतलब कि जादू हो गया, तो ये भी एक तरह से जादू, जादू का थ्योरी हो गया। अब प्रश्न उनसे अगर हम पूछे, ठीक है बिग बैंग से ब्लास्ट हुआ तो आप बताइए बिग बैंग कहाँ से आया, पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते, वो जो छोटा बहुत छोटा था वो कहाँ से आया? बताइए उसको किसने बनाया और ब्लास्ट किसने किया? तो ब्लास्ट कहीं भी होता है तो हम क्या करते हैं? ब्लास्ट के बाद पुलिस पता करती है कि किस आतंकवादी ने ब्लास्ट किया था। ये नहीं कोई सोचता है कि बाई चांस ब्लास्ट हो गया है, सीआईडी वालों को कोई जरूरत नहीं है, आराम से सो जाओ, बाई चांस अपने आप ब्लास्ट हो रहा है दिल्ली में। और कभी ये भी नहीं देखा कि ब्लास्ट के बाद जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें बन गई, कभी आपने देखा कि ब्लास्ट के बाद सुंदर बिल्डिंग बन गई? हिरोशिमा और नागासाकी में ब्लास्ट हुआ था, आज तक वहाँ पे उसका असर है। ब्लास्ट के बाद सुंदर सुंदर घर, इतना सुंदर सुंदर शरीर नहीं बनता है। तो इसलिए ये बोगस आइडिया, और दुर्भाग्य की बात है कि हम सबको पढ़ाया जाता है ये सब। और बिग बैंग थ्योरी अनप्रूवन थ्योरी, आज तक उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया जा सका है, केवल कल्पना है ये। तो आज भी विज्ञान के पास क्लू नहीं है कि किस कौन संसार को बनाया, कैसे बना संसार, किसने बनाया। और अगर ये मान भी लिया जाए कि बिग बैंग से ब्रह्मांड बना, मान भी लीजिए, लेट अस सपोज एक्सेप्ट कि बिग बैंग से ब्रह्मांड की रचना हो, तो फिर उद्देश्य क्या है ब्रह्मांड का, क्यों बना, क्या उद्देश्य है? अगर वैज्ञानिकों का बात मान ले तो इसका मतलब है कि कोई उद्देश्य नहीं है संसार का। अपने ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट का क्या उद्देश्य होता है? इसका मतलब है कि हम सब केमिकल से आए हैं, हमने तो एक बात केमिकल्स में जो कि बोगस है, इसको हम प्रूव करेंगे अपने फर्स्ट सेशन में। वी आर नॉट केमिकल्स, आत्मा का विज्ञान उसमें डिस्कस करेंगे, रीइंकार्नेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रूफ्स है, कई केसेस हैं रीइंकार्नेशन के। अगर मृत्यु के समय सब कुछ समाप्त हो जाता है तो कुछ लोग अपने पूर्व जन्म को कैसे याद कर पा रहे हैं? इस पर रिसर्च हुआ, हम आपको दिखाएंगे वीडियो में, पूर्व जन्म को याद करते हुए कैसे हम याद कर रहे हैं। अगर मृत्यु के समय सब कुछ समाप्त हो जाता है, हम केमिकल्स हैं और सारा केमिकल्स फिर से केमिकल में मिल जाता है, तो फिर पुनर्जन्म की बात कहाँ से आ गई? विज्ञान के पास से क्या उत्तर है? इन प्रश्नों का उत्तर कहाँ में है? वेदों में, अध्यात्म में, भगवद गीता बताता है। तो इसलिए ये बात को मानना कि भगवान नहीं है, ये अपने आप में मिलता है, हर जगह भगवान है, आप भगवान को हर जगह देख सकते हैं, उनकी रचना में भगवान को देखना शुरू करते हैं। शुरू में हमें भगवान को उनकी रचनाओं में देखना पड़ेगा, और जब आप शुद्ध हो जाओगे पूरी तरह से हृदय से, तो फिर बता देंगे यू कैन टॉक टू गॉड फेस टू फेस। ये कल्पना नहीं है, हमारे आचार्यों ने अपनी कल्पना नहीं लिखी है शास्त्र, उन्होंने पूरा डिटेल में बताया है भगवान कैसे हैं, भगवान की कैरेक्टर क्या है, क्या क्वालिटी है, एवरीथिंग सब बताया हुआ है। और यहाँ तक लिखते हैं कि हमने दर्शन किए मुझे। तो इतने सारे आचार्य क्या सब मूर्ख हैं? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग, शंकराचार्य 12 साल की उम्र में शंकराचार्य ने सारे वेदों को कंठस्थ कर दिया 12 साल की उम्र। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र कितनी है? 27। सोचिए शंकराचार्य आपके आधे से भी कम है, उसी समय उन्होंने सारा कंठस्थ कर लिया। तो क्या वो पागल हैं कि भगवान को मान रहे हैं? लोग बोलते हैं जिनका कोई काम नहीं होता वो भगवान को मानते हैं, जिनको कुछ जॉब नहीं मिलता है तो भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। तो फिर शंकराचार्य ने क्यों किया, इतनी बुद्धि थी, इतनी बुद्धि थी तो क्या उनको जॉब नहीं मिल रहा था? तो हजारों वर्षों से हमारे आचार्य सब पागल हैं, सडनली आज 100 साल पहले मनुष्य बुद्धिमान हो गया, बाकी सब पागल थे सदियों से पूजा करते आ रहे हैं, और सडनली 21वीं सदी में 20वीं सदी में मनुष्य बुद्धिमान हो गए हैं, और बुद्धिमान हो गए और ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है जिससे कि संसार जो आज विनाश के कगार पर खड़ा है, ये बुद्धिमान का काम है। तो सोचना पड़ेगा हम लोग समझ के, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग से प्रार्थना है कि आप लोग सोचिए इसको। देखिए हम ब्रेन दिखाया गया है, हम अपने ब्रेन का कितना परसेंट यूज करते हैं?
कितना 3%।
तो बाकी 97% किसके लिए है? The human brain is the most sophisticated computer in the universe. तो कंप्यूटर बनाने में बुद्धि लगता है कि नहीं? The human brain can store more information than all the libraries in the world. सोचिए कितना hard disk capacity है, कितना GB capacity है? इतना जीबी का हार्ड डिस्क आप खरीदने जाएंगे तो वो कितना पैसा लगेगा? नहीं बताइए, पीछे आप बताइए, आप कितने हार्ड डिस्क, इतना जीबी का हार्ड डिस्क खरीदने जाएंगे तो कितना पैसा लगेगा आपको मार्केट में? हैं? आई नहीं। पर अगर मान लिया भी जाए तो हैं? We believe it. जैसे ही कोई आएगा आप बोलेगा अरे अरे नहीं नहीं विज्ञान ने तो प्रूव कर दिया है भगवान नहीं है। अच्छा ऐसा हो गया क्या? तो इंडिया में सब बिलीव करते हैं लेकिन एग्जाम में जाके डार्विन थ्योरी भी लिखते हैं, घर पे गणेश जी की पूजा करते हैं, गणपति जी बोलते हैं आज डार्विन थ्योरी ठीक से लिखवा दीजिए। हर जगह बन रहा है, उद्देश्य अभी भी नहीं बता पा रहे हैं
लेकिन हम ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो हमारे जो है भौतिक जगत में कुछ काम है।
अलग बात है, भौतिक जगत में क्या काम है वही तो पूछ रहा हूँ, कौन बताएगा कौन काम है, क्या काम है?
We are searching.
Unless you don't come to the spiritual God, है ना? विज्ञान इतने सालों के बाद भी आंसर नहीं है उसके पास, इस बात का आंसर नहीं है। उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का, ब्रह्मांड का उद्देश्य? आई नो यू ऑल आर हियर बिकॉज यू आर सर्चिंग, आई नो दिस पॉइंट, बट स्टिल आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैट द लूप होल्स इन मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च, ताकि आपका फेथ और स्ट्रांग हो कि वेदों की बहुत आवश्यकता है हमारे जीवन में। हर चीज़ हम साइंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और यहाँ तक कि ये भी होना चाहिए कि नहीं कि केवल हरे कृष्ण वाले लोग ही भगवान को मानते हैं, वैज्ञानिक भगवान को नहीं मानते, बहुत लोगों का ऐसा विश्वास है कि नहीं? क्या बात
है,
नहीं आप बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन फिर भी भगवान के नियमों को नहीं मान रहा। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, भगवान को नहीं मानते हुए व्यक्ति कैसे मानता है? भगवान को नहीं मानता लेकिन फिर भी मानता है, इसका उदाहरण भारत, भारत में कई भी लोग सोचते हैं वैसे तो भगवान नहीं है लेकिन क्या दिक्कत है अगर गति दिखाई देते हैं, चलो अगर होंगे तो काम आएगा, ये इस तरह का भगवान मानते हैं। थोड़ा मंदिर घूम के आ जाते हैं तो बाई चांस अगर हो गया तो
लेकिन आप सोचिए,
इसका मतलब है कि वास्तव में भगवान को नहीं मानते, अगर भगवान को मानेंगे तो गलती नहीं कर सकते। समझ बात, भगवान को अगर वो मानते कि भगवान है और भगवान गलत चीज की सजा देंगे,
इन सब में कॉमन तो भगवान
हो रहा
है, इन सब में कॉमन तो
काल्पनिक है ना, ये तो जैसे
काल्पनिक होता है कि फेथ सब तब सेम नहीं होता,
काल्पनिक ही है, स्ट्रांग फेथ नहीं है। समझ बात,
स्ट्रांग फेथ है,
जब तक स्ट्रांग फेथ आपका नहीं होगा वो फेथ सेकी है। अभी फेथ मंदिर में आए तो फेथ हो गया, बाहर गए तो गए भगवान का, इसलिए कि सब लोग जाते हैं चलते हैं बहुत सदियों से। आज भी ज्यादातर लोग, हाँ मेरे दादा जाते थे, उन्होंने सिखाया था, देखा तो सब जा रहे थे, मैं भी चला गया। इसलिए रास्ता बता रहे हैं ना कि सबसे पहले हमें इस बात पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप, उसके लिए हम प्रूफ कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, है ना। फर्स्ट स्टेप आध्यात्मिक जीवन का पहला स्टेप क्या होता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। फर्स्ट स्टेप भगवान के बारे में जानना कि भगवान है, सबके स्रोत हैं, सारे गौरणों के कारण। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा हाउ टू नो मोर अबाउट हिम, पता चल गया यहाँ ठीक है भगवान है लेकिन कौन है, कहाँ है, क्यों है, उन्होंने क्यों हमें बनाया, ये सब प्रश्न है ना, भगवान ने हमें क्यों बनाया, ये प्रश्न का, और कौन है उनका, कैसे हैं, दिखने में कैसे लगते हैं, क्या उद्देश्य है उनका, ये सब डिटेल जानना पड़ेगा। ये डिटेल के लिए हम अगली बार चर्चा करेंगे, गेटिंग द आईज टू सी गॉड, दैट इज सेकेंड सेशन। और आज के सेशन में हमने प्रूफ किया कि भगवान है, और बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। पढ़िए, कोई पढ़ेगी इसको जोर से पढ़िएगा, लॉर्ड केल्विन के बारे में आप लोग जानते हैं, केल्विन कितने लोग जानते हैं, आप जानते हैं केल्विन के बारे में, बोलिए। तो केल्विन ने उनको नोबेल प्राइज मिला था टेम्परेचर स्केल, फॉर्म बिलीवर हुआ। और क्या बोल रहे हैं, वी थिंक स्ट्रांगली है ना, वी बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। तो कौन बोल रहे हैं, साइंटिस्ट, कैन साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, यस। और भी देखिए, और कई साइंटिस्ट हैं, न्यूटन पढ़िए, कोई जोर से पढ़िए।
most beautiful system of the sun, planets and comets would only proceed from the council and dominion of an intelligent and powerful outer beast.
इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि न्यूटन बता रहे हैं कि कोई पावरफुल व्यक्ति है इसके पीछे और
दिस बीइंग गवर्न्स ऑल थिंग्स नॉट एज द सोल ऑफ द वर्ल्ड बट एज लॉर्ड ओवर ऑल एंड एन गॉड ऑफ हिज डोमिनियन ही इज टू बी कॉल्ड लॉर्ड गॉड यूनिवर्सल रूलर
तो न्यूटन भी साइंटिस्ट है और वो इस बात को मान रहे हैं है कि नहीं इनको 1945 में नोबेल प्राइज मिला पढ़िए
द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन पर्पस स्टीयर द बायोलॉजिस्ट इन द स्पेस वेयर एवर ही लुक्स द प्रोबेबिलिटी फॉर सच एन इवेंट एज द ओरिजिन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स टू हैव अकर्ड बाय शेयर चांस इज जस्ट टू नॉट टू बी सीरियसली कंसीडर्ड
बाय चांस मैक्स बॉर्न ये सब आधुनिक वैज्ञानिक हैं लोग बोलेंगे न्यूटन और आइंस्टीन तो बहुत पुराने थे वो लोग मानते होंगे आजकल के लोग नहीं मानते ऐसा नहीं दो जो से दैट द स्टडी ऑफ साइंस मेक्स अ मैन एन एथिस्ट मस्ट बी रादर सिली बी डेरेक बार्टन तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हाउ डज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मैटर टू मी तो भगवान अगर हैं और अगर हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं तो अगर हम उनके आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या कर सकते हैं सप्लाई बंद कर सकते हैं कि नहीं और आजकल वही हो रहा है आजकल सप्लाई कम होता जा रहा है डिमांड बढ़ता जा रहा है सप्लाई कम होता जा रहा है इसलिए क्या हो गया है बैलेंस क्राइसिस क्राइसिस कब होता है जब सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो क्राइसिस होता है इसलिए आज क्राइसिस है भगवान ने सप्लाई बंद कर दिया क्यों पाप बढ़ रहे हैं दुनिया में पाप बढ़ रहा है मानते हैं आप लोग सब मानते हैं पाप बढ़ रहा है ना तो पाप बढ़ रहा है तो भगवान बोलते हैं पाप जब भी पड़ेगा तो मैं सजा दूंगा पाप का मतलब जो भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन यापन नहीं करता जो पाप के कार्य करता है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे थर्ड सेशन में कि भगवान की आज्ञा के अनुसार क्यों नहीं कैसे नहीं चल पा रहा तो आज का कंक्लूजन यही रहा कि हमने वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ किया है ना यहाँ तक कई वैज्ञानिकों का स्टेटमेंट भी दिखाया आप लोगों को कि भगवान हैं इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी किताबें भी हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं जो वैज्ञानिकों ने लिखा है इसमें साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया गया है और जिसमें से ये सारी किताबें हैं जिसपे कि वैज्ञानिक तरीके से प्रूव किया गया है कि प्रकृति के को देख के पता कर सकते हैं कि भगवान है जैसे कन्फेशंस ऑफ द इवोल्यूशनिस्ट ये किताब है कोई बड़ी किताब है इसमें इसी बात पे चर्चा हुई है कि कैसे जो है वो वैज्ञानिक तरीके से प्रूव किया है कि भगवान का अस्तित्व है कई किताबें ऐसा नहीं है लोग हम लोग जो किताब पढ़ते हैं वो बहुत लोग आजकल एथिस्टिक किताब पढ़ रहे हैं कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एथिस्टिक किताब लिखी है जिसे प्रूव किया कि भगवान तो एग्जाम्पल देंगे एक वैज्ञानिक है उसका नाम है डॉकिंस सुना है आपने नाम डॉकिंस उसने एक किताब लिखी है गॉड द गॉड डिल्यूजन उसने प्रयास किया है कि प्रूव करने का कि भगवान नाम का कोई चीज और अभी बोल रहे थे सब भगवान को मानते हैं है ना लेकिन ऐसा नहीं है आप जो पढ़ते हो उसमें क्या लिखा है भगवान नहीं आप साइंटिफिक किताब पढ़ोगे उसमें लिखा है भगवान नहीं साइंस का बेसिस यही है भगवान नहीं Again, after what basis in Darwin theory? जो हम किताबें पढ़ते हैं, हम बोलते हैं हम भगवान पे विश्वास करते हैं, लेकिन किताब वो पढ़ रहे हैं, वो एग्जाम में लिख रहे हैं, जो कि भगवान पे विश्वास करने से मना कर देंगे। इसका मतलब क्या है? हम सहयोग दे रहे हैं, नहीं? हम भी, और साथ ही साथ नहीं है, आप अपनों कितने कितने लोग मानते थे आज से क्लास से पहले कि हम हमारे पूर्वज बंदर थे? है नहीं? क्योंकि वो पढ़ा है और जो आप पढ़े वो मानते भी हैं, इसलिए वैदिक कल्चर इस बात को नहीं मानते हैं, वेदा इस बात को नहीं मानते। अगर भगवान ने क्रिएट किया है तो सब कुछ केमिकल से कैसे आ सकता है? भगवान से आ सकता है। तो इस तरह से हमारे कहने में और करने में अंतर है, हम जो कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो अंतर है। इसलिए वास्तव में भगवान को बहुत कम लोग मान रहे हैं आज, वास्तव में वो देखते हैं, इसलिए मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था कि भगवान है और उनको विश्वास किया जाए। और भी कई बुक्स हैं, वीडियो हैं, पर मैं उसको डिस्कस नहीं किया, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन कई वीडियो हैं जो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि समय कम था। ये सारे वीडियो छः वीडियो हैं, ये सारे प्रूफ करते हैं डार्विन थ्योरी को गलत प्रूफ करते हैं और भगवान के अस्तित्व को प्रूफ करते हैं। भगवान है, डार्विन कोलैप्स, मिरेकल ऑफ द डिजाइन इन दिस एग, द स्पाइडर, बेवर्स हाउस आर्किटेक्ट मॉडल, कोलैप्स ऑफ द थ्योरम डार्विन, ये सारी वीडियोज हैं जो आप अगर आप चाहें तो आप रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं। मिस्टीरियस ओरिजिन ऑफ द मैन, इज अनदर वंडरफुल वीडियो, और हम चाहें तो देख सकते हैं। तो ये सारी प्रमाणों से प्रूफ है भगवान है और हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, वही कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ। तो अगर हम भगवान की पूजा करेंगे तो क्या होगा? भगवान खुश होंगे और सब कुछ प्रचुर मात्रा में वो सप्लाई होगा। इसीलिए भारत बहुत धनी देश था, भारत में बहुत ही धन धान्य था, तो लूट के इतना ले गए यहाँ से, है कि नहीं? इंडिया आप लोगों ने, इंडिया में वैज्ञानिक विकास नहीं हुआ, अगर वैज्ञानिक विकास नहीं हुआ फिर भी लोगों के पास इतना धन था कि नहीं? इतना सब कुछ था, लोग खुश थे। इंडिया में समस्या तो आई जब ब्रिटिशर्स बाहर से लोग आके अटैक किए इंडिया। इंडिया ने पिछले 10,000 साल के इतिहास में इंडिया ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया किसी दूसरे देश पर, क्यों? जरूरत ही नहीं, हर चीज़ है हमारे पास में, क्यों भीख मांगने का? लेकिन आज जो है भारत भीख मांग रहा है वर्ल्ड बैंक से, ये बैंक से, वो बैंक से, विज्ञान के विकास के बाद तो ये स्थिति हो गई और भीख मांग रहा है। लेकिन इस तरह से हम इस बात को समझें और अपने जीवन में आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर भगवान हैं तो उनके बारे में और जानकारी कैसे प्राप्त करें, तो हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि फेथ की जरूरत है शुरू में फेथ। डायरेक्ट हम नहीं देख सकते, अभी हम बस इनडायरेक्टली हमने पता किया कि भगवान है, लेकिन फिर भी शुरुआत में हमें फेथ करना पड़ेगा और बाद में जब हम जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा भगवान में डायरेक्ट दे सकते हैं। तो फेथ करके भगवान ने एक प्रोसेस दिया कि ऐसे ऐसे करो, ये काम करो, अगर तुमने अच्छे से किया ये सब तो तुम मुझे देख पाओ। जैसे अर्जुन भगवत गीता में अर्जुन क्या बोलोगे कि मन मना भव मत भक्तो मत जाजी माँ नमस्कुरु माँ में शिशु सत्यम से प्रति जानी के लिए, कि मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो और तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें चिंता मत करो, सत्य होगा। इसमें तो भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, इसको प्राप्त किया जा सकता है, तो उसको विधि है ना, विधि का पालन करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अरे हमारे आचार्य भगवान और उन्होंने सच किया, तो हमारा जो ब्रेन जो है उसका जो इतना कैपेसिटी दिया गया है ताकि हम इस आध्यात्मिक विज्ञान को समझ सकें। भौतिक विज्ञान के में विकास करने के लिए ज़्यादा ब्रेन की जरूरत नहीं है, 5% बहुत है। 5% में देखिए क्या क्या रिसर्च हो गया कि नहीं। अगर पूरा 100% यूज कर देंगे लेकिन पता ही नहीं कैसे यूज करना है। इसे आध्यात्मिक जीवन में बाकी ब्रेन के बाकी पार्ट एक्टिव हो जाते हैं, जब आध्यात्मिक जीवन में आप आगे बढ़ोगे। तो थैंक यू वेरी मच। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? थोड़ा आज का प्रेजेंटेशन लंबा रहा क्योंकि आधा घंटा तो एक्चुअली 1.5 घंटे का हर प्रेजेंटेशन है, लेकिन रिकैप में हमारा जो आधा घंटा चला गया ना शुरू उसके कारण और बीच में थोड़ा क्वेश्चन आंसर, लेकिन क्वेश्चन आंसर बीच में होता है तो उससे डेविएट हुआ करता है। तो इसलिए और स्पेशली जो व्यक्ति शुरू से अटेंड नहीं करता है सडनली आता है ना तो वो प्रश्न पूछता है बीच में, क्योंकि बैकग्राउंड है नहीं इसलिए वो कन्फ्यूज हो सकता है। अच्छा है कि आप लोग जो आ रहे हैं रेगुलर प्रयास के लिए आएंगे, किसी को कोई प्रश्न है आज इस बात पे कोई संदेह कि भगवान के अस्तित्व पे कोई संदेह रह गया तो पूछ सकते हैं। जो इसके संदेह बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बोल रहे हैं कि अगर संसार में इतना दुख है और भगवान के पास शक्ति है तो भगवान इसको दूर क्यों नहीं करते, है नहीं प्रश्न है? तो जैसे कि इसे बताते हैं, इस रूम में अगर आप लाइट को बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अंधेरा का अपना अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, अंधेरा करके कोई चीज नहीं है। एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस, एब्सेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड दुख। जैसे ही आप भगवान को अपने जीवन से हटाएंगे क्या आएगा? दुख। अलग से नहीं है, अलग से दुख का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। तो जब भगवान को हम हटा दे रहे हैं तो कहाँ से सुख आएगा? तो भगवान आने का प्रयास कर रहे हैं तो कहा नहीं हमें नहीं चाहिए। तो भगवान को नहीं, बिना भगवान के हम सुखी रहना चाहते हैं संभव नहीं। बिना लाइट के मुझे अंधेरा चाहिए, अंधेरा दूर करना है। नहीं नहीं लाइट जलाओ ना, बहुत अंधेरा है रोगी, लाइट जलाओ। नहीं नहीं बिना लाइट के तो अंधेरा दूर कर दीजिए, हो जाएगा, हो सकता है। नहीं तो लोग राम राज्य चाहते हैं लेकिन राम को नहीं चाहते। हम राम राज्य तो चाहते हैं लेकिन राम को नहीं चाहते। बिना राम के राम राज्य स्थापित हो सकते हैं? नहीं। यही हमारी समस्या। जैसे कि एक व्यक्ति उदाहरण देता है, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम लोग भगवान का नाम जप करते हो सब बेकार है, तुम्हारा भगवान अगर है तो इतना दुख क्यों है संसार में? तो भक्त ने बोला अच्छा अच्छा हमको भी पता था। बाहर गया तो एक व्यक्ति जो था रोगी रोड पे पड़ा हुआ था तो उसको देख के फिर बुजुर्ग से चिल्लाने लगा, संसार में कोई डॉक्टर नहीं है, संसार में कोई डॉक्टर नहीं है। फिर डॉक्टर बोला तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे सामने मैं बैठा हुआ हूँ, बोलो संसार में कोई डॉक्टर नहीं, अगर संसार में डॉक्टर है तो ये व्यक्ति बीमार क्यों है? तो डॉक्टर ने बोला मैं क्या करूँगा, आए नहीं है मेरे पास, आएगा तब मैं दवाई दूंगा। बोला कि यही बात है, संसार में भगवान है और भगवान तैयार है हमारे दुखों को दूर करने के लिए, फिर कोई जाना नहीं चाहता भगवान के पास, कोई भगवान से सहायता चाहता ही नहीं। हाँ ऐसे सोच रहे हैं, हम अपने आप सॉल्व कर लेंगे समस्या को। सरकार आजकल क्या कर रही है? भगवान को बुला रही है बीच में समस्या को सॉल्व करने के लिए? नहीं, आज आप वेदों में दिए हुए नियमों का पालन कीजिए, आज सारी समस्या हल हो जाएगी। हाँ डिप्लोमेटिकली बस डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स, इसको कहते हैं डेमोनियाक कल्चर, हिरण्यकशिपु जैसा। इन्होंने रस्म और राम बिना भगवान के खुश रहना चाहते थे, समझो ना। इसलिए भगवान को अगर हम अपने जीवन में लाएंगे तो फिर देखिए आप अपने आप शांति और सुख आ जाएगा पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। सिंपल बताते हैं, वेद बताते हैं, हरिनाम संकीर्तन आप अगर करोगे पूरे विश्व में सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। केवल भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए पूरे विश्व में, गारंटी के साथ वेद बताते हैं, गारंटी। जैसे हैदराबाद में एक बार बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी और वहाँ पे प्रभुपाद गए, वहाँ पे यज्ञ हो रहा था, यज्ञ किया बहुत लोगों ने, यज्ञ के बाद भी बारिश नहीं हुई, तो प्रभुपाद ने गए और उस दिन बड़ा हरिनाम संकीर्तन निकाला और हरिनाम संकीर्तन निकाला उस दिन जबरदस्त बारिश हुई वाली बात। भगवान के नाम में शक्ति है, भगवान के गुणों में, भगवान के नाम में शक्ति है, और कैसे है ये हम नहीं समझ सकते, ये पावरफुल है, विज्ञान से हम उसको माप नहीं सकते, अचिंत्य है, सोच नहीं सकते। जैसे गाय, सिंपल चीज, अचिंत्य, आप नहीं पता कर सकते। जैसे गाय को आप घास खिलाते हो और दूध निकलता है, आप वैज्ञानिक तरीके से समझ सकते हो उसको, तो ऐसी मशीन एक तरफ से घास डाले दूसरी तरफ से दूध निकले, ऐसा कोई मशीन है? दो मिनट अगर आप प्रसाद लेके जाइए प्रसाद, दो मिनट, तो इस तरह से अचिंत्य से, तो भगवान दुख दूर करना चाहते हैं, लेकिन हम उनके आगे का पालन तो करें, अपने हृदय को शुद्ध करें, जिस तरह से भगवान ने विधि बताया भगवद गीता, इस तरह से करो दुख सारे दूर हो जाएंगे। बोलते हैं कि जो आपके सारे दुख जो है वो दूर हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सर्व धर्मान को जो माँ भी कम शरण हो जाए, अहम तो हम सर्व पापों में मुख्य हिस्सा है, सारे पापों से मुक्त कर देंगे भगवान को, फिर मेरी शरण में धुला तो रहे लेकिन जाना नहीं चाहते। थैंक यू वेरी मच। बाकी जो प्रश्न होगा तो क्लास के बाद भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, वेरी कृष्ण। तो अभी हमारा अगली बार अगले सेकंड में सीशन होगा, लेकिन आज दूसरी बार और आप मेरा फिर से स्वागत है, मेरा हम आमंत्रित करते हैं। और अभी प्रसाद लेके जाइएगा, हरे कृष्णा, प्रसादम की व्यवस्था है, प्रसादम रेडी है, तो प्रसाद
हाउ इज रिलीजन इज कनेक्टेड टू गॉड।
हाँ, तो इसके बारे में से हम 6 से 7 मिनट डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ कितना जस्ट लाइक रिलीजन इज नथिंग बट ए कल्चर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ गॉड।